आसमान में लगभग अंधेरा छा गया था। सभी घरों के बाहर दिए रखे जा चुके थे। दादी के घर के बाहर भी मोमबत्ती और दिए जलाए गए थे। लालटेन की रोशनी भी वहां फैली हुई थी। ये गांव था, इसीलिए बिजली बहुत मुश्किल से ही आती थी, लेकिन अब इन लोगों को ऐसे रहने की आदत हो गई थी। लालटेन, मोमबत्ती और दियों की रोशनी से ये लोग अपना गुजारा कर लेते थे। आस्तिक आंगन में बैठा हुआ था और अपने दोनों हाथों से कव्वाली कर रहा था। मच्छरों की आतंकी सेना ने उस पर हमला कर दिया था। वैसे भी शहरी खून है, बहुत स्वादिष्ट होगा, यही सोचकर पूरे गांव के मच्छर आस्तिक के आसपास मंडरा रहे थे। आस्तिक परेशान हो रहा था। कभी अपने दाएं हाथ से ताली बजाकर मच्छर मारने की कोशिश करता तो कभी बाएं हाथ से, लेकिन मच्छर बड़े ही चालाक निकले। आस्तिक के हाथ खाली के खाली रह गए। वो एक भी मच्छर नहीं मार पाया और मच्छरों के काटने और उनकी आवाज़ से और ज़्यादा इरिटेट हो गया। तभी घर के अंदर से अरुणिमा आई और आस्तिक को देखकर हंसने लगी। वो अपने साथ कुछ लेकर आई थी, कुछ गोल गोल सर्कल जैसा जिससे धुआं निकल रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा को देखा। अरुणिमा मुस्कुराते हुए उसके पास आई। आस्तिक इस समय कुर्सी पर बैठा था। अरुणिमा कुर्सी के पास वो कोयला रखते हुए बोली, ये मॉस्किटो कॉइल है, थोड़ी देर में इससे मच्छर तुमसे दूर रहेंगे। वैसे शंभू ने गलत नहीं कहा था, यहाँ बैठकर तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि अंदर आ जाओ, अंदर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। आस्तिक बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से में बोला, मुझे नहीं आना अंदर, और मुझे इस जगह पर भी नहीं आना था। सुबह कब होगी, उसने झुंझलाते हुए कहा। अरुणिमा हंसते हुए बोली, सुबह होने में अभी वक्त है, बस एक रात की बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ब्लडी हेल, किस मुसीबत में फंस गया मैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से तुम्हें बचाने के चक्कर में और जाहिलों के बीच फंस गया, और वो औरत, उसने मुझे क्या कहकर गई, सुना तुमने? अगर इस वक्त मेरी गन में बुलेट होती तो मैं उसकी जान ले लेता, आस्तिक ने गुस्से में अरुणिमा को घूरते हुए कहा। अरुणिमा जल्दी से बोली, नहीं आस्तिक, ऐसा मत करना, देखो गांव के सीधे साधे लोग हैं, और चाचा ने भी किसी गलत इरादे से तुम्हें वो बात नहीं कही थी, उन्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता था। ये छोटी सी बात है, इग्नोर कर दो, वैसे भी हम कौन सा यहाँ बहुत दिन रुकने वाले हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे, बस आज रात की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तभी शंभू बाहर आया और अरुणिमा से बोला, अरे भौजी, आप यहाँ हैं, हमको लगा ही था कि आप भैया जी के पास ही होंगे, दादी आपको बुला रही हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। अरुणिमा ने सिर हिलाया और एक नज़र आस्तिक को देखकर वापस घर के अंदर चली गई। शंभू आस्तिक के पास आकर हंसते हुए बोला, और भैया जी, कैसा लग रहा है आतंकी सेनाओं के बीच? आस्तिक गुस्से भरी नज़रों से शंभू को देखता है। शंभू और जोर से हंसकर बोला, अरे भैया जी, हमको क्यों गुस्से में घूर रहे हैं, इन नज़रों से ना तो हम डरने वाले हैं और ना ही ये मच्छर, हमने तो पहले ही कहा था कि घर के अंदर आ जाइए, और अब भी अगर अंदर नहीं आना है तो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है, ये तो वो मच्छर हैं जो शाम को सिर्फ हालचाल पूछने आते हैं, असली रात के मच्छर तो अभी तक आए ही नहीं हैं, और सच बताऊँ भैया जी, रात के मच्छर काटते नहीं, डसते हैं। आस्तिक की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो हैरानी से शंभू को देखते हुए बोला, क्या और भी मॉस्किटो आने बाकी हैं क्या? वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक साथ 100 गैंगस्टर से लड़ना आसान है पर इन मॉस्किटो से नहीं। शंभू हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात, लीजिए मैं आपको घर के अंदर ले चलता हूँ। शंभू अंदर आया और ना चाहते हुए भी आस्तिक को घर के अंदर आना पड़ा। वो देखता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा लेकिन पूरे सामान से भरा हुआ कमरा है। वहीं दूसरी तरफ दो खटिया रखे हुए थे जिन पर जूट की बुनाई हुई थी। शंभू आस्तिक को लेकर एक खटिया के पास आया और बोला, भैया जी आप यहाँ बैठ जाइए। आस्तिक खटिया को देखकर हैरानी से बोला, यहाँ बैठूं? इस पर? इसमें तो बहुत सारे छेद हैं। शंभू हंसते हुए बोला, हाँ तो भैया जी, छेद में से थोड़ी ना गिर जाएंगे, आप आराम से बैठिए, हम दादी से कहते हैं आपके लिए चाय बनाने को, वो पीछे रसोई में है और भौजी भी उन्हीं के साथ हैं। आस्तिक एकदम से चौंक गया और हैरानी से देखने लगा, जबकि शंभू हंसते हुए वहां से चला गया। आस्तिक धीरे धीरे खटिया पर गया और सावधानी से बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे काफी अजीब लग रहा था, ये बहुत अलग तरह की चीज थी। उसने आज तक सिर्फ सोफे या फिर महंगे काउच पर ही बैठा था, लेकिन इस तरह की जूट की बुनाई वाली खटिया पर बैठना उसके लिए एक नया ही अनुभव था। वहीं घर के पीछे की तरफ जो कच्ची पक्की झोपड़ियों के बीच रसोई बनी हुई थी, वहां दादी चूल्हे के पास बैठी हुई थी और अभी अभी उन्होंने चूल्हा जलाया था। अरुणिमा उनके पास आई और पास में बैठते हुए बोली, दादी जी मैं आपकी मदद कर दूं? दादी ने एक एक करके सारी सब्जियां सामने रखते हुए कहा, अरे नहीं बिटिया, सब कुछ हो गया है, बस थोड़ी ही देर में खाना बन जाएगा, फिर तुम और तुम्हारा आदमी दोनों खाना खाकर आराम करना। जैसे ही दादी ने तुम्हारा आदमी कहा, अरुणिमा एकदम से हंस पड़ी और बोली, दादी क्या कहा आपने, मेरा आदमी? मैंने पहली बार सुना है। दादी भी हंसते हुए बोली, आदमी नहीं तो क्या, औरत कहूँ उसे? वैसे एक बात कहूँ, दिखने में तुम्हारा आदमी थोड़ा खड़ूस और अकड़ू लगता है, लेकिन तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। अरुणिमा की हंसी थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने दादी की बात का मान रखते हुए हल्के से सिर हिलाया। उसने देखा कि सामने बहुत सारी कच्ची सब्जियां कटी हुई थी। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर एक पपीता उठाने ही वाली थी कि दादी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बिटिया, ये मत खाओ, गर्भवती महिला को पपीता नहीं खाना चाहिए, बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। अरुणिमा की आंखें एकदम बड़ी हो गई और वो चौंकते हुए दादी को देखने लगी। उसने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? दादी मुस्कुराते हुए बोली,
कैसे नहीं पता होगा, इस गांव की सबसे पुरानी दाई हूँ मैं। औरत को देखकर ही बता देती हूँ कि उसका पांव भारी है, और तुम्हारे तो चेहरे की चमक ही बता रही है कि तुम माँ बनने वाली हो। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की मायूसी और निराशा आ गई। जिन लोगों को वो जानती तक नहीं थी, वे तक उसके हाल को समझ रहे थे, पर आस्तिक, जिसके साथ वो रहती थी, उसने कभी उसे इस नजरिए से देखा ही नहीं कि उसके बारे में कुछ महसूस कर सके। दादी चूल्हे पर बर्तन रखते हुए बोली, वैसे बिटिया मैं अभी तक पूछ ही नहीं पाई, नाम क्या है तुम्हारा? दादी के सवाल पर अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मेरा नाम अरुणिमा है। अरुणिमा मतलब सुबह की पहली लाल किरण, जो अपने साथ आशा और उम्मीद लेकर आती है। तुम्हारा नाम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, दादी ने अरुणिमा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अरुणिमा एकदम से हैरान रह गई, उसके नाम का इतना खूबसूरत मतलब था जो उसे आज तक पता ही नहीं था।